वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से चौथे अध्याय से पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के गुह्य कारण श्लोक क्रमांक 68। लादिनीर सार प्रेमा प्रेम सार भावा भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है और भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है जिसके दो विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है, किंतु जब यह लादिनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है तो वो कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम से उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय के भोग के पीछे उन्मत्त हो उठता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वो इसकी दुखदायी भावनाओं की अंतः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्णकांत शिरोमणि सर्वगुण खनी कृष्णकांत शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है और वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। लादिनी शक्ति का निर्मल कार्य ब्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। दोबारा पढ़ेंगे इसको। लादिनी शक्ति का कार्य किसमें प्रकट होता है? ब्रज बालाओं के और उनके और ब्रज बालाओं और उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। इट मैनिफेस्ट इन टू दी एक्टिविटीज ऑफ राधा एंड गोपीज, व्हाट मैनिफेस्ट? लादिनी शक्ति. लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम का सार है भाव. इसकी पराकाष्ठा है महाभाव. श्रीमती राधा रानी की दिव्य चेतना की इन तीन अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है. श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीन अवस्थाओं की साक्षात परम मूर्ति है. मतलब भगवत प्रेम, भाव और महाभाव, इन तीन वस्तुओं की राधा रानी साक्षात मूर्ति हैं, परसोनिफाइड. इसलिए श्री वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत हैं और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है. कृष्ण प्रेम भाविता यार चित्तेन्द्रिय काया, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय. उनका मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं. वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं को लव में उनकी सहायता करती है. श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान आध्यात्मिक हैं, उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए. वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के समान नहीं है जिनके भौतिक इंद्रियों से आवृत्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर होता है. वे पूर्णतया आध्यात्मिक है. उनका शरीर मन दोनों ही आध्यात्मिक स्वरूप है. चूंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है अतः उनकी इंद्रिया भी आध्यात्मिक है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और जो कल हमने थोड़ा सा बताया था वो श्लोक यहाँ पर है. हाँ, 73वां श्लोक है. कृष्ण रे कराय या इच्छे रस आस्वाद, क्रीड़ा रसहाय आइछे सुन विवरण. मतलब अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती है. इसे बहुत सुंदर श्लोक है, ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाएं. सो ब्यूटिफुल. एक श्लोक मैं ढूंढ रहा हूं. हाँ, ये श्लोक हम पढ़ेंगे जरूर. गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि. श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है. वे गोविंद की सर्वस्व है और उनके समस्त प्रियसियों में वे शिरोमणि हैं. शिरोमणि का जो उल्लेख है ना, वो बार बार आ रहा है. ओके, चलो आगे बहुत शोक है, ठीक छोड़ देंगे इसके. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकं. श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. तो श्री कृष्ण को निरंतर आनंद देना राधा रानी का सबसे प्रिय कार्य है. उसी के लिए वो रहती है, उसी के लिए उसका अस्तित्व है. और जीवों के लिए वो आध्यात्मिक पोषण करती है. और गोपियों का निर्माण भी उनके ही व्यक्तित्व से हुआ है और उनके ही साथ मिलकर वो श्री कृष्ण को कैसे विविध प्रकार के आनंद दें इसकी योजना बनाती रहती है. ललिता विशाखा वृंदा देवी उनकी इच्छा के अनुसार अलग अलग जगह पर लीलाओं का आयोजन करते हैं और वो 8 प्रकार के प्रेम के जो भाव हैं उसमें से जैसे उचित समझे वैसे योग्य वातावरण में उन उन भावों का प्रकाश करते हैं। तो उसमें दो प्रकार के भाव हैं, एक है स्वकीय एक परकीय। और वृंदावन धाम में स्वकीय लीला भी है और परकीय लीला भी है, दोनों एक साथ उपस्थित रहती हैं। और साथ में जो अद्भुत प्रकार की लीलाएं हैं, कैसे कहें उनको, चटपटी लीलाएं ब्रजभाषा में, वो अधिक करके जावट में होती हैं। अभी जावट का इतिहास ऐसा है कि यावट जाववट या यावकवट या जावकवट वो स्थान है जहां पर जब ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई थी, जब ब्रह्मा ने सभी बालकों को हरण करके अपने लोकों में लाके रखा था, तो सभी ग्वाल बाल तभी ब्रह्मा जी के लोक में थे, लेकिन कृष्ण यहाँ पर सभी ग्वाल बालक के रूप में प्रकट हो गए थे। अपना वैभव विलास उन्होंने किया था, ऐश्वर्य का दर्शन किया था। और श्री कृष्ण भगवान इतने लीला चतुर हैं कि एक ही लीला में बहुत सारी लीलाओं को समाविष्ट कर लेते हैं। एक तरफ से ब्रह्मा जी का कल्याण कर रहे हैं, सब ग्वाल बाल बनकर घूम रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अचानक विष्णु बन जाते हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, जब वो विष्णु बनते हैं सब ग्वाल बाल, तो कितने विष्णु हो गए, अनंत विष्णु हैं। और एक एक विष्णु के साथ में एक एक देवताओं का सेट भी है। कोई लोग 33 कहते हैं, कोई 33 करोड़ कहते हैं, जो भी है, कोटि का अर्थ एक तो है करोड़ और एक है प्रकार। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी खुद भी खुद को देख रहे हैं कि वो भी अलग अलग रूप में विष्णु की आरती कर रहे हैं। और अचानक सब गायब हो जाते हैं और फिर वही बालक हाथ में दही भात लेकर ढूंढ रहे हैं, मेरा मेरे सखा कहाँ गए। तो वो जो समय था वो एक एक क्षण का समय था, ब्रह्मा जी का एक क्षण था, लेकिन पृथ्वी का एक साल था वो। तो वो एक साल में हर रोज शाम को श्री कृष्ण भगवान घर गए, हर रोज शाम को श्री कृष्ण भगवान दिन में वापस आए, गौचारण किया, हर रोज का ये जो रूटीन था वो चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ अद्भुत अद्भुत ऐसे अनुभव हो रहे थे सबको। गायों को अद्भुत अनुभव हो रहा था जब उनके बछड़े उनको दूध पी रहे थे, माताओं को अद्भुत अनुभव हो रहा था जब उनके बालक उनके स्तनपान कर रहे थे, और बलराम जी को भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि बलराम जी का वो दिन बर्थडे था जिस दिन ब्रह्मा सम्मोहन लीला हुआ, इसलिए वो नहीं थे उसके अंदर। एक दिन ऐसे ऊपर से गोवर्धन के ऊपर से जब बड़ी गायें छोटी गायों को नीचे पर्वत के तले देखते हुए जो भाग कर जा रही थी ना, डाउन हिल इतनी गति से कि बहुत डेंजरस था वो जो आकर्षण था बड़ी गायों का बालकों के प्रति, वो देखकर बलराम जी थोड़े से चतर्क हो गए। उन्होंने कहा कृष्ण ये क्या है, तो कान में कहा कि ऐसे ऐसे है, डोंट वरी। तो उस समय पर जब भी राधा रानी की सगाई की बात चल रही थी तो वो सब लोग पूर्णमासी के पास जाते हैं, हमने बताया ना, वो बताया ना वो पीली पोखर वाला काम, नहीं बताया, पता है कई कई जगह बताया, मुझे याद नहीं आता कहाँ बताया। तो जब ये हाथ धोने का काम हुआ तो फिर सगाई की बात चली, फिर गिफ्ट की एक्सचेंज हो गई, यहाँ से वहाँ मोती हीरे सब बने। उसके बाद में सभी गोपियाँ मिलकर पूर्णमासी के पास गए और उन्होंने कहा कि इनका विवाह होना चाहिए, अभी इतने शुभ लक्षण हैं, दोनों पार्टियाँ एक्सेप्ट हैं, एग्री हैं, तो तुरंत विवाह होना चाहिए। लेकिन पूर्णमासी जो है वो नंदगांव बरसाना जावट में वो जो परकिया भाव का चटपटा अनुभव है उसको बनाए रखने के लिए कहती हैं कि अभी वो जो स्टार्स है ना, वो नक्षत्र अभी सही जगह पर नहीं है, अभी विवाह नहीं होना चाहिए, अभी अलग मुहूर्त ढूंढेंगे हम, अब के लिए बात टाल देते। सभी गोपियाँ फिर नाराज़ हो गई थी बहुत उस समय। तो भगवान जानते थे कि सभी गोपियों को इच्छा है मन में मेरे साथ विवाह करने की, तो उन्होंने ये समय ढूंढा। जब ही ब्रह्मा जी के द्वारा सारे ग्वाल बाल छीन गए थे, उस समय सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण ही थे स्वयं, सभी गोपियों के घर में, सभी वृंदावन धाम में जितने भी ग्वाल बाल थे सब कृष्ण ही थे। तो नंद बाबा को कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी अच्छा मौसम है, अभी सबका विवाह सबके साथ कर देना चाहिए। नंद बाबा भी तुरंत राजी होते, पूर्णमासी भी राजी हो जाती है और उनका विवाह होता है सबका। तो उस लीला में ब्रह्म सम्मोहन लीला में राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ उसका वर्णन उसमें अंदर नहीं है। हाँ, इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग. और आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मुझे उसका उत्तर पता नहीं है. राधा रानी के विवाह की बात हुई है, और तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से होता है. अभिमन्यु जटिला के पुत्र हैं और कुटिला के भाई हैं. सुंदर नाम है ना, जटिला कुटिला. क्या बढ़िया सेवा है उनके. देखो आप, हमेशा गाली देना, हमेशा ताने मारना, हमेशा गुप्त हेरगिरी करना, हमेशा पीछे लगाना, हमेशा पैरा देना, उनको मिलने नहीं देना. इसलिए अद्भुत कहानी, अद्भुत उनकी लीला है. और वो जो उनकी उनकी सेवा है वो केवल कृष्ण के और राधा रानी के आनंद को बढ़ाने के लिए है ना. अभी प्रियकर प्रेयसी को अगर कोई रोक ही नहीं रहा है मिलने के लिए, तो मिलने में इतना थ्रिल नहीं होता है. लेकिन सब जगह से बंधन है, यहाँ से सीसीटीवी लगा हुआ है, यहाँ से कोई पीछे जा रहा है आपके, तो फिर वो चुप चुप के मिलने में बहुत थ्रिल होता है. तो वैसे ही राधा रानी और कृष्ण जो है संकेत में मिलते हैं. और वो बरसाने के मंदिर के पीछे आप गए हो कभी? बरसाने के मंदिर के पीछे एक जगह है चरण चिन्ह की, वहाँ पर वो खड़े होकर नंदगांव में इशारे करती थी. नंदगांव में ये खड़े होकर इशारे करते थे. 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन डिस्टेंट विजन बहुत पावरफुल है. इशारे करके फिर तय करते थे. ऐसे ही केवल संदेश में, सिग्नलिंग ओनली. तो भाव इतना तीव्र था कि वो भाव से जहाँ पर राधा रानी खड़ी हुआ करती थी, वो पत्थर पिघलता था, उसमें राधा रानी के चरण चिन्ह बने हुए हैं. जहाँ पर वो भाव से व्याकुल होकर श्री कृष्ण को इशारे करती थी. फिर कभी कोकिला वन में कोकिल बनकर मिलते थे. तो यही जावट है जो कोकिला वन के पास में है, जहाँ पर जटिला कुटिला निवास करते हैं. और राधा रानी कृष्ण को ना मिले, इसी के लिए उनका जीवन सर्वस्व समर्पित है. वो बुढ़िया जो है डंडा लेकर दरवाजे पर बैठी थी हमेशा. और राधा रानी का हमेशा जितना मूवमेंट है वो सब उसके अंडर था, नियंत्रित. कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितनी देर में आओगी, जल्दी आना, उसके पीछे कोई भेजती थी. तो अभी इतने कर्रे पहरे में, अभी देखो एक भाव होता है सासू का और एक भाव होता है ननंद का. ननंद बहुत ज़्यादा सख्त होती है. हाँ, वो हमारे मानस जो शास्त्रज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सास और ननंद के बीच और बहू के बीच में क्यों झगड़ा होता है? क्योंकि उनको लगता है कि सास और बहू को लगता है कि ये जो पति है ये अब तक हमारा था, भाई और पुत्र. इतने साल तक हमने इतने से उसको बड़ा किया, और इतना बड़ा होते हुए बहन कहते देखा, और अभी ये आई है उसी वस्तु को अपना भोग्य वस्तु बनाने के लिए. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट इज नाउ बीइंग शेयर्ड. अब तक तो हमारा था, अभी दूसरी कोई आ गई बीच में, तो इसलिए उनका नहीं जमता है. ये साइकोलॉजी है. क्योंकि जो नई आई है वो श्रृंगार रस में है. वो कहते हैं आपका रस जा तो आपका जो रस है उससे ऊंचा मेरा रस है, इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है. तो दूसरे कहते हैं कि तो क्या हुआ, हम तो बहुत पहले से यहाँ पर हैं, हम बहुत सीनियर हैं इस रिश्ते में, आप नए नए हो. लेकिन सीनियर होने पर भी वो जो रिश्ता है, नया रिश्ता, वो ऊंचे दर्जे का है. इसलिए वो संघर्ष जो है भौतिक दुनिया में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चलते रहता है. दैट इज द होल पॉइंट. जब तक अपनी अपने विषय वस्तु पर हम अधिकार नियंत्रण छोड़ते नहीं है, तब तक वो जो है ना सहयोग नहीं होता है कभी भी. अंडरस्टैंड? जब तक हम लोग अपने विषय वस्तु पर नियंत्रण छोड़ नहीं देते हैं, तब तक इस विश्व में हमेशा संघर्ष बना रहता है, कभी भी संघर्ष छूटता नहीं है. वी हैव टू लर्न टू गिव अप अवर कंट्रोल अवर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस. तो फिर बिल्कुल मित्रता, सहयोग, सब कुछ और दिखाई पड़ता है. दिव्य गुण जो है ना वो तुरंत प्रकट होने लगते हैं. लेकिन दिव्य जगत में भी ये चालू है, लेकिन वो कृष्ण के आनंद को बढ़ाने के लिए है. तो ये जावट में बहुत चटपटी लाए हैं, बहुत ज्यादा. तो कृष्ण भगवान वहां पर कोकिल बनकर आते हैं, मेल कुकू बर्ड, और सुंदर सुंदर ध्वनि करते हैं. तो जिनको पता होना चाहिए उनको पता चलता है कौन है ये. कोई सीक्रेट नहीं उनके लिए. जिसके हृदय में भाव होता है ना प्रेम का, उसे अपने प्रेमिका के और प्रेमक प्रेम करने वाले व्यक्ति की तरफ से जो भी इशारे हो रहे हैं उसका पूरा अर्थ समझ में आता है. और बाकी लोगों के लिए वो मिस्ट्री होती है, क्या है ये, क्या चल रहा है. लेकिन जिनके हृदय में जिसके प्रति प्रेम है उनके प्रति प्रेम के वजह से, प्रेम के माध्यम के वजह से आदान प्रदान बिल्कुल सरल होता है, एकदम क्लियर कट। हम बोलते हैं ना कि हाउ वॉज द कॉल, वॉज इट क्लियर, तो वो प्रेम होता है तो कॉल एकदम क्लियर होता है, हृदय से हृदय तक, उसमें कोई इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं है, हृदय को हृदय के भाव समझ जाते हैं। तो राधा रानी और गोपियाँ समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण आए हुए हैं, तो वो तुरंत भागते हैं एकदम आकर्षित होकर। तो जटिला रोकती, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कोई कोकिला वन में कोकिला आ रहा है। लेकिन वास्तव में ये भी था कि जटिला भी वहाँ पर कोकिल की आवाज़ सुनकर मोहित हो रही थी। तो कहते मैया हम जाएँ, कोकिल बहुत अद्भुत कोकिल है ये, इसकी ध्वनि जो है ना वो बहुत अद्भुत है, हमने कभी सुनी नहीं है, हम जाना चाहते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं भी यहाँ मोहित हो रही, मैं यहाँ सुनती हूँ, आप जाओ आप जाओ। इस तरह सब गोपियाँ जाकर उनकी ध्वनि सुनते हैं। तो वो जावट और कोकिलवन जो है ना एक ही किलोमीटर दूर है। जावट के जो मंदिर है, जो वृषभानु महाराज ने जब राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ तो अपने समदिन को शांत करने के लिए बहुत बड़ा महल बना के दिया था जावट में, अभी भी है वो, जहाँ पर जटिला कुटिला का निवास है। वहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको कोकिला वन का दर्शन होता है, और कोकिला वन बहुत ही अद्भुत जगह है, जहाँ पर रास लीला होती है, विरह लीला होती है, भगवान चुप चुप के कोकिल बनकर आकर सुंदर मधुर ध्वनि करते हैं। हमारे रत्ना भक्ति रत्नाकर में भी नरहरि सरकार वर्णन करते हैं, हाँ एक दिन आई शे कोकिला, वहाँ पर एक दिन कोकिला आया था, बहुत सुंदर सुंदर ध्वनि किया था, सब गोपियाँ भाग भाग के गई थी, सुंदर वर्णन करते हैं भक्ति रत्नाकर में कोकिला वन की लीला का वर्णन है। तो एनीवेज, तो एक दिन राधा रानी अपने घर में बैठी है और उधर से कोकिला वन में श्री कृष्ण आते हैं और मुरली बजाते हैं, सुबल को लेके आते हैं और मुरली बजाते हैं। कौन सी धुन बजाते हैं? आठवीं धुन बजाते हैं। उनकी मुरली की जो आठवीं धुन है ना, वो राधा रानी के लिए समर्पित है। जब वो बजती है तो किसी को सुनाई नहीं पड़ती, केवल राधा रानी के अलावा, ओनली शी हियर्स। कितना प्रेम है कृष्ण को राधा रानी के ऊपर। अरे मुरली उनकी विश्वविख्यात है, उनकी मुरली के आठ स्वरों में से क्या क्या नहीं होता है वो अलग विषय है, कभी अलग बताएंगे। लेकिन उस मुरली जो विश्वविख्यात है वो सब विश्व को मोहित कर देती है। तो गोलोक वृंदावन से बज रही है और सब जगह पर उसकी ध्वनि गूंज रही है पुकार के रूप में, चलो सब लोग चलो गोलोक धाम चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसे विश्वविख्यात जो मुरली है जो महाविष्णु को भी नींद से उठा देती है, और ऐसे भाव विभोर करके वो ऐसे झूमते हैं। वो मुरली में एक जो ध्वनि है, एक स्वर है, वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के लिए समर्पित है, बाकी सारी ध्वनियाँ अनंत लोगों के लिए उसका उद्देश्य है। कोई गायों के लिए है, कोई गोपियों के लिए है, कोई किसके लिए है, उन गोपियों के लिए भी एक बीच में आठवां स्वर जो है राधा रानी के लिए। तो उस स्वर में उनको बुलाते हैं, पुकार रहे हैं, आओ मैं मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तो यहाँ पर मुरली सुनाई पड़ती है तो तुरंत राधा रानी व्याकुल हो जाती है, क्योंकि उनको तुरंत बाहर निकलती है मटका लेकर, बोले कहाँ जा रही हो? बोले पानी समाप्त हो गया। अरे अभी तो गई थी आप 15 मिनट पहले, बैठो जाके अंदर। तो वो श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो वो बड़े फिर दोबारा बजाते हैं, फिर सुबल की स्थिति कैसे पता है ना आपको? वो सुबल बेचारे बीच में, वो मुरली बजा रही है, वो नहीं आ रही है, तो फिर ये व्याकुल हो रहे हैं, तो संभालना भी इनका काम है। एक बार बजाया फिर नहीं आए, दो बार बजाया फिर भी नहीं आई, हर बार वो कोशिश कर रही है बाहर निकलने की। जटिला तो दरवाजे पर ही बैठी है डंडा लेकर, बिल्कुल मना कर देती है। तो उस समय कई बार मुरली बजाकर फिर श्री कृष्ण इतने व्याकुल हो जाते हैं, वो सुबल को कहते हैं सुबल अभी मेरा जीवित रहना मुश्किल है, अभी मैं शरीर त्याग दूंगा, जब मैं शरीर त्यागूंगा तो ये मेरी मुरली और मेरी गुंजमाला राधा रानी को भेंट के रूप में देना। दिस इज लाइक अल्टीमेट विल। विल सुबल को बता रहे, सुबल बिचार होते अरे अभी इतना इतना तुम इतना व्याकुल मत होना, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं जाता हूं अभी, आई एम देयर। सुबल की एक विशेष स्थिति है, सुबल बहुत कुशल है, जब भी ऐसे कोई उत्कट घटना होती है ना तो सुबल का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, इज अ वेरी एक्सपर्ट। और जब भी गोपियों के और कृष्ण के गुट के बीच में जब भी क्या होता है ना, बेबना होता है ना, जब भी जोरदार कुछ झगड़े होते हैं ना, तो सुबल बीच में होता है और वो ललिता के साथ डिस्कस करता है और फिर वो सॉर्ट कर देता है। उज्ज्वल सुबल यहाँ से, ललिता विशाखा वहाँ से, जब भी दोनों गुटों में कुछ गड़बड़ होता है तो वो उसको समेट करने के लिए सुबल उज्ज्वल बहुत एक्सपर्ट है। तो सुबल अभी देख रहे हैं कि अभी ये अभी उनका मिलन होना है, तो क्या कर रहे हैं अभी? कहते कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ ना, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं करूंगा कुछ, आप चिंतित, प्राण मत छोड़ना, मैं आ रहा हूं। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते ना हम लोग, जुगाड़ करना ही है कुछ ना कुछ। तो वो जाते हैं कोकिला वन से जावट की ओर, और वो जावट में ऐसे ऐसे ना ऐसे बावरे होकर डोल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे कुछ से कुछ खो गया है होता ना, समथिंग यू लॉस्ट समथिंग। तो कैसे हमारा देखने से पता जाता है कि इसको कुछ खोया हुआ है, कुछ खो गया है इसका, इसका मोबाइल खोया है, घड़ी खोई है, कुछ ना कुछ चश्मा खो गया है, कुछ ना कुछ हो गया है, या बीड बैग खो गई है। सुबह जो कहाँ रखी थी पता नहीं, बाद में त्याग करके विरह मतलब मुक्ति प्राप्त करती उससे। तो अभी अगले दिन को सभी वापस जरूर पड़ती है तो ढूंढ रहे हैं, कल जब समाप्त हुआ था तो कौन से माले पे फेंक दिया था उसको। तो ऐसे पता चलता है भाव पे, व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज पे कि वो क्या, कुछ भाव उसका क्या है। तो वो क्या है, तो जटिला जटिला के सामने आता है, उधर ही ढूंढना है ना उसको, उधर राधारानी को उधर ही बैठी है। तो वो ढूंढ रहे हैं, और तो जटिला कहते, अरे सुबल क्या हुआ, इतना चेहरा लाल हो गया है धूप में, ढूंढते ढूंढते इतना क्या घूम रहे हो, क्या हुआ क्या। कहते नहीं मैया, मैं मेरा बछड़ा खो गया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत थके लगते हो, जाओ जाओ जाओ, थोड़ा सा जलपान करो, छाछ वाछ पियो, अंदर जाओ, राधा रानी बैठी है उधर जाओ। तो उनको तो वही चाहिए था ना, तो तुरंत अंदर जाते हैं। सुबल को देखते हैं तुरंत राधा रानी, ललिता विशाखा, कैसे ललिता और विशाखा सब लोग गोल बैठे हैं, और उसके बीच में बहुत दुखी होकर ऐसे अपने घुटनों में सर डालकर राधा रानी फुट फुट कर रो रही है। सीन देख रहे हैं, गोल बैठे हैं उसके बीच में, विजुलाइज करना जरूरी है तभी आप आनंद आएंगे आपको। तो फिर वो जैसे सुबल आता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, अरे सुबल आ गया, मतलब कुछ अभी उनको विश्वास है उस पर कि उस अभी होने वाला है। तो कहते हैं कि अरे मैं इस तरह से अंदर आया, तो उनको जलवल पिलाया, सब मिठाई विठाई खिलाई। तो बोले क्या करना है अभी। वो तो फिर वो ना रिपोर्ट देते हैं कि आपके विरह में, क्योंकि आप नहीं आ पा रही हो, वो प्राण त्यागने की स्थिति में आ गए हैं, बेहोश से हो गए हैं, गिर गए हैं, और वो गुंजमाला और मुरली और देने की बात कर रहे हैं। तो राधा रानी और व्याकुल हो जाते हैं, सुबल बताओ कैसे मिलना है। तो सुबल कहते हैं कि मेरे मन में एक युक्ति है। सुबल की एक विशेषता है, राधा रानी का जैसा रूप है वैसा ही सुबल का रूप है। वो पुरुष है लेकिन उसका चेहरा, उसकी शरीर यष्टि जो है वो राधा रानी की तरह ही है, एनी टाइम एक्सचेंजेबल। तो वो कहता है कि मेरे मन में एक युक्ति ऐसी है कि आप मेरा श्रृंगार करो, मैं आपका श्रृंगार करता हूँ, और वैसे ही मैं बचरा ढूंढने के लिए आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचरा जो है वो राधा रानी के गौशाला में मिल गया है ना। तो आप मैं बनकर चले जाना कृष्ण को मिलने के लिए, और मैं आप बनकर यहाँ बैठूंगा, जैसे कि राधा रानी घर पर ही है। कुछ समझ में आया क्या आपको? मतलब अभी सुबल जो पुरुष हैं वो राधा रानी बनेंगे, हाँ, और राधा रानी सुबल बनेंगे, और बाहर कौन जाएगा? सुबल बनके, हाँ, मतलब सुबल आया और सुबल गया, राधा रानी घर पे ही है, ऐसा है। तो फिर वो तुरंत जो है ना, वो जो घाघरा पहना हुआ है ना, उसको लहंगा कहते हैं, वो परकर बोलते हैं उसको, गोपी ड्रेस में होता है वो सुबल को पहनाते हैं। सुबल का जो धोती है वो राधा रानी पहनती है, सुबल का जो उत्तरी वस्त्र है राधा रानी पहनती है, सुबल का जो फेटा है। तो राधा रानी बीच में कहती है कि मुझे दो समस्या है, एक जो मेरे लंबे लंबे घने जो बाल हैं वो वहाँ कैसे छुपाऊँ उसको। तो सुबल कहता है कि मेरा जो फेटा है बहुत बड़ा है, उसके अंदर सारे बालों को हम जैसे मैंने बांधा है वैसे बांध सकते हैं। दूसरा कहता है मेरा उन्नत वक्षस्थल जो है यौवन से भरा हुआ, वो एक समस्या है। बोले कोई बात नहीं, वो जो बछड़ा है ना, एक बछड़ा चुन लेना और वो ऐसे छाती पर ऐसे लेकर जाना। पता है आपको, आपने कभी बछड़े को पकड़ा है? ऐसे छाती में पकड़ते हैं ना, तो दो पैर यहाँ होते हैं, दो पैर यहाँ होते हैं, बीच में आपके हाथ होते हैं ऐसे, और वैसे पकड़ते हैं उसको और ले जाते हैं ग्वाल बाल। तो वो कहते हैं कि वैसे आप पकड़ लें तो आपको दोनों चीज़ों का दर्शन का कोई चांस नहीं है। तो बढ़िया श्रृंगार फटाफट गुपियाँ कर देती है, और सुबल घर में बैठते हैं, और फिर राधा रानी सुबल बनकर बाहर निकलती है। और तीसरी बात राधा रानी कहती है कि मेरी आवाज़ जो है ना ध्वनि, इसको मैं कैसे छुपाऊं। तो कहते हैं सिंपल सी बात है, जब भी जटुला आपको पूछेगी कि मिल गया बछड़ा, तो आप कहना छाछ वाछ पानी वानी पी लिया तो आप कहना तो बोलने का भी कुछ काम नहीं, थोड़ा सा वो कहते ना खर्ज में हूं बोलना वो लोअर सप्तक में हो गया, मंद्र सप्तक में, और नॉर्मल सप्तक में हूं, और तार सप्तक में हूं तो आप मंद्र सप्तक में जो है ना पुरुषों का आवाज उसर उधर होता है उस पट्टी में, तो वो सज धज के जाती है बाला फेटा बन करके और सब बिंदी बिंदी निकाल के और बछड़ा को वक्ष स्थल पर लेते हुए बाहर निकलते हैं। निश्चित रूप से जटिला पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं बछड़ा मिल गया हम जा रहे हैं, मतलब बोलते नहीं कुछ, उत्तर देके निकल जाते हैं। और फिर सुबल के रूप में राधा रानी जो है वो पूरी जमुना पार करके कोकिला वन में जाती है, वहां पर कृष्ण इतने व्याकुल है इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि सुबल अकेला आ रहा है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं सुबल लगता है आज तो मुझे मारकर ही रहेगा, आज मुझे शरीर त्यागना ही पड़ेगा, क्या हुआ वो क्यों नहीं आ रही है। तो उनकी वो व्याकुल अवस्था देखकर फिर राधा रानी को अपना जो रूप है ना वो बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, वो तुरंत फेटावटा छोड़ देते हैं, बछड़े को छोड़ते हैं, मैं आ गई हूँ कृष्ण मैं आ गई हूँ, तो कृष्ण की जान में जान आ जाती है और वो तुरंत राधा रानी को लेकर कोकिला वन में बहुत सुंदर बहुत देर तक व्यवहार करते हैं। बहुत समय के बाद में फिर सुबल और सखियां बैठी हुई हैं अरे उनका पीरियड भी फिक्स है ना, कितना देर करना है सब तो वो कहते हैं कि अभी हम जल लेने, अभी जल तो बहुत देर हो गया ना, समाप्त हो गया जल, अभी जल चाहिए ना जल इज अ कंज्यूमेबल थिंग ना, इट्स ऑलवेज कंज्यूम्ड। तो कहते मैया अभी पानी समाप्त हो रहा है तो जल भरने को जाना चाहिए, तो फिर वो मटके लेकर बाहर निकलते, तो हाँ ठीक छोड़ देते हैं। तो सुबल जो है वो राधा रानी है स्वयं, सॉरी नहीं राधा रानी, सुबल राधा रानी बने हुए हैं और सखियाँ उनको मटके लेकर जाते हैं, फिर जमुना किनारे जाते हैं और जमुना किनारे में ड्रेस एक्सचेंज होता है, ड्रेस एक्सचेंज होके पानी भरने को नहीं भूलते हैं, पानी भी भरना है ना बाबा, खाली खाली बर्तन लेके आए तो बोलेंगे कहाँ गए थे आप लोग, क्या करके गए थे। तो वहाँ पर जमुना किनारे में वो अपना भेष बदलते हैं, सुबल सुबल बन जाते हैं, राधा राधा बन जाती है, फिर वो पानी भरकर लेकर आते हैं। तो ये जो व्याकुलता जो है ना वो प्रेम के गहराई को बढ़ाती है, एब्सेंस ऑफ द बिलेवेड मेक्स द लव फॉन्डर ऐसे कहा गया। जब हमारा प्रेम प्रेमी व्यक्ति होता है वो जब दूर होता है तो उसके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ते रहता है, और जितना विरह हो उतना प्रेम बढ़ते जाता है। तो अभी कैसा है कि एक साल तक तो कृष्ण ने सभी के साथ में पति के रूप में व्यवहार किया, सभी के घर में गोपियां आई और सभी के घर में कृष्ण उनके पति थे, तो एक साल तो उनका रसमय आदान प्रदान चलता रहा। जब ये लीला समाप्त हुई तो सारे गोप जो है वो कृष्ण में विलीन हो गए, मतलब जो विष्णु स्वरूप थे, और जो मूल गोप थे वो आ गए ब्रह्मा लोक से। तो उस दिन वो चले घर पे, इतनी सुंदर स्थिति है, जब वो गोप लौट के आए उनको पता चला कि कृष्ण ने हमारा रूप लेकर उनसे विवाह किया है, तो वो कृष्ण की भोगियां हैं हमारी नहीं है, तो उन्होंने कभी भी पत्नी के रूप में उनका भोग नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है, उनकी सेवा एक ही थी केवल कृष्ण से मिलने को रोकना और उनके कृष्ण की उत्सुकता के लिए बढ़ाना और उनके प्रेम को बढ़ाना, यही उनका उद्देश्य था। सच अ डेडिकेटेड सैक्रिफाइसिंग लाइफ, ब्रज में रहते हुए भी ऐसे विचित्र प्रकार की सेवा करना उनको, उनके मन में भी कृष्ण के लिए कुछ कम प्रेम नहीं है और गोपियों के मन में भी कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन वो अलग प्रकार का प्रेम है, और उन दोनों रसों को बनाए रखने के लिए हमारी सेवा है कि बार बार उनको विरोध करना है, छोड़ना नहीं है। तो फिर वो लौट के आए, फिर वो कृष्ण का विरह शुरू हो गया उनका, मतलब एक प्रकार से कृष्ण दूर है और गोप हमारे पति घर में है और उनको मिलना है, तो वो जब जाती थी ना सूर्य पूजा करने के लिए, उसका राधा गमन मार्ग कहा गया है, वहां से सूर्यकुंड का रास्ता, तो वहां पर कृष्ण गौचारण करते करते आते थे और रास्ता में उनको मिलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा माई ने राधा रानी के लिए एक बक्सा भर के बहुत सारे मिठाइयां और गिफ्ट और गहने और वस्त्र वगैरह एक वो बना रही थी, बड़ा पेटारा बना रही थी, तो कृष्ण आए, कहा कि हाँ ये क्या हो रहा है, तो राधा रानी के लिए भेंट भेज रही हूँ, तुम चले जाना यहाँ से, तुम्हारा कुछ काम नहीं, जाओ। तो कृष्ण सोचते हैं कि अच्छी आइडिया है, तो पूछते हैं खड़ी की वो कैसे भेजते हो आप उसको, बोलते हैं बंद करते हैं उसको और फिर सेवकों के कंधे पर उसको डंडा रख के उसको पहुँचा देते हैं, फिजिकल डिलीवरी। हाँ बोला अच्छा ठीक है चले जाता हूँ। और जब ही वो बक्सा बनकर तैयार होता है और जब भेजने का समय आता है तो मैया तो वहाँ रहती नहीं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया उनको, तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। जब मैया ने आदेश देकर मैया चली गई, अब निकलने वाले हैं, तो बोले रुको 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 रुको, खोलो उसको खोलो, तो खोलते हैं और खुद उसमें बैठ जाते और फिर वो सीधे कहाँ पर एंट्री मिलती है, सीधे उस महल में जहाँ पर जटिला और कुटिला और राधा रानी रहती है। तो वो जब आते हैं तो जटिला कहती है क्या है, तो बोलते यशोदा मैया ने नंद महाराज नंद भवन से आपके लिए ये भेंट भेजी है, राधा रानी के लिए भेजी है। तो बड़ी प्रसन्न होती है, कहती सीधे राधा के कमरे में रख देना, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं बीच में कि भाई और एक सिक्योरिटी क्रॉस करना है और सिक्योरिटी क्रॉस करना है, एकदम रॉयली राधा रानी के कमरे के अंदर ही उनका आगमन होता है। और फिर जैसे ही वो छोड़ के चले जाते हैं तो वो पिटारे से बाहर आते हैं और राधा रानी को मिलते हैं, अभी बंद दरवाजे मिल रहे हैं। तो उतने में वो जटिला कुटिला घर में भी होने पर भी पहरा रहता है उनका, घर में भी क्या हो रहा है, तो उनको ना बंद कमरे में उनके वार्तालाप सुनाई पड़ता है कि कृष्ण बोल रहे हैं, राधा रानी कुछ बोल रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं, राधा रानी को जवाब दे रही है। तो बोले कृष्ण तो कमरे में है, अरे कमरे में, हाँ हमारे राज्य के केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, इन द सेंटर ऑफ आवर किंगडम, हाँ हाउ इट इज पॉसिबल। तो कहते काम करते अभी ना दरवाजा बंद ही है तो बंद ही रहने दो, अंदर से बंद है तो बाहर से कड़ी लगा देते हैं, सब चटकनियां बाहर से लगा देते हैं, खिड़कियां बाहर से बंद करते हैं, जितने दरवाजे बाहर से बंद करते हैं, और कहते हैं कुटिला कुटिला आ जाओ, अभिमन्यु आ जाओ, सब लोग आ जाओ, देखो मतलब उनका रंगे हाथ पकड़ना है। तो सोचते आज तो अभी जब आते ना अंदर, सुनो जटिला कह रही है सुनो अभी, तो सब लोग कान लगाकर शांति से सुनते हैं, वार्तालाप चल रहा है अंदर, आवाज भी आ रही है, राधा का अलग ध्वनि कृष्ण की अलग ध्वनि, आज तो रंगे हाथ पकड़ना ही है। और दरवाजा खोलते बाहर से धक्का मार के तोड़ के अंदर जाते हैं तो अंदर कोई नहीं है, नोबडी इज देयर, क्योंकि उतने क्षण में आप, पता है ना आपको, आपको अभी मक्खी को अपने हाथ से उड़ाना है, सोच कर ऐसा करते तो मच्छी उड़ जाती है, बीच में कितना पल होते हैं, बीच में लव मात्र भी नहीं होता है, लेकिन लेकिन कभी आप उसको पकड़ सकते हो क्या, नॉट पॉसिबल ओनली। उस तरह से वो धक्का देना, दरवाजा तोड़कर अंदर आना, उतने क्षण के अंदर ये गायब हो जाते हैं, लेकिन अपनी मुरली वहां भूल जाते हैं, होता है ना जल्दी जल्दी में सब, तो देखते हैं कृष्ण कहीं नहीं, सब सब जाके कोने कोने में ढूंढते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, सब जगह ढूंढते हैं, इसके पीछे उसके नीचे बिस्तर के नीचे सब देखते हैं, किधर भी नहीं मिलता है। फिर देखते रहे मुरली यहां पर है, तुम कितना भी झूठ बोलोगी लेकिन तुम्हारा झूठ अधिक देर तक छुपने वाला नहीं है, ये मुरली यहां कैसे आई बताओ। तो राधा रानी कहते हैं कि आज तो मुरली की वर्षा हुई थी अभी देखो हम लोग भी ऐसा कुछ बोल लेते हैं लेकिन उसके आगे कुछ होता नहीं है लेकिन जैसे ये कहती है कि आज मुरली की वर्षा हुई थी तो बोले क्या बात कर रही हो, जाके देखो आपके कमरे में, देखो महल में, देखो हॉल में, देखो दीवान खाने में, देखो गोपियों के घर में, देखो तो सारे जावट में हर एक घर में एक मुरली मिलती है उनको अभी क्या बोलेंगे ऐसे। और एक बार उनका अंदर प्रवेश होता है और उस समय जब दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं तो राधा रानी देवी की पूजा कर रही, कृष्ण भगवान एक क्षण में देवी बन जाते हैं और राधा रानी अभी उनसे बात कर रही है, जो पैसे पहले बात चल रही थी वो अभी उनसे ही देवी से बात कर रही है, तो दो आवाज तो है, देवी भी बोल रही है राधा रानी भी बोल रही है। फिर एक बार ऐसे ही ये कैसा है ना, जब बाहर निकलते हैं ना पानी भरने के लिए कुछ करने के लिए, उसके पीछे पीछे स्पाई निकलते हैं, तो फिर वो देखते हैं काली के मंदिर में कृष्ण और राधा रानी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिर वो तुरंत जाती है और अभिमन्यु को जटिला को सबको लेके आती है, पकड़ेंगे उनको आज जाके। तो काली के मंदिर जाते हैं तो जब ये पहुंचते हैं वहां पर तो वहां पर कोई नहीं है, काली के रूप में श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी उसकी पूजा कर रही है। तो ये चाहते थे अरे काली महारानी, तो काली को पूजा करते हैं, दंडवत करते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, तो उतने में काली बोलने लगती है, इसमें अभिमन्यु कौन है? तो मैं हूँ। तो ले हमारा पुत्र है, ये देवी महारानी क्या बताइए? बोलते कंस इस पे बहुत नाराज है, कंस के सैनिक मथुरा से निकल गए हैं और वो बहुत जल्द अभिमन्यु का वध करने वाले हैं। बोले क्या कारण क्या है? कारण मुझे पता नहीं है, वो बहुत नाराज है। बोले क्यों? तो देवी देवी जटला कुटला बहुत विकल हो जाती है, कहते बताइए क्या करना है, अभी क्या करना है, मेरे बेटे को बचाइए, देवी महारानी आपकी पूजा करेंगे, बताइए। बोले एक ही उपाय है, क्योंकि हमने सुना है कि राधा रानी को आप मथुरा भेजना चाहते हो, वृंदावन से दूर, उसका कारण है कि आप कृष्ण से उनको मिलना नहीं चाहते हो, मिलाना नहीं चाहते हो, इसलिए इस रोज की परेशानियों से मुक्त होने के लिए आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, तो अगर आप राधा रानी को ये रखोगे तो फिर कंस का आतंक आपको नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी जहाँ पर है वहाँ कंस नहीं आ सकता है। बोले ये बात तो सही है। तो फिर वो वादा करते देवी माँ को कि हम राधा रानी को यहाँ से दूर नहीं भेजेंगे। तो ये कहते तथास्तु। ऐसे जावट में बहुत चटपटी लीलाएं हैं। तो उसी जावट में राधा रानी का जो महावर है, जो एक सुंदर श्रृंगार है पैरों का, वो एक नष्ट हो गया था, एक बार स्खलित हो गया था, उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो फिर राधा रानी के दिव्य चरण कमल उस वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में लेकर कृष्ण भगवान ने वो श्रृंगार का जो रंग लेकर वह बहुत ही एकाग्रता से अपलक, मैंने कहा बताया था ना कल, अपलक यानी पलक भी ना झुक झुकते हुए उनका श्रृंगार किया था राधा रानी का। और कहते हैं कि राधा रानी का श्रृंगार किया तो तुरंत राधा रानी का जो महावर लगाया हुआ जो सुंदर चरण कमल है दोनों, वो उन्होंने छाती पर लगा लिए थे, और वो जावट जावक का जो रंग है वो उनकी छाती पर भी विराजमान हो गया था। और पैरों में तो चंदना गुरु कुमकुम तो लगाते ही हैं, वो भी भगवान ने छाती पर धारण किए थे राधा रानी के। ऐसा सुंदर दृश्य है। एक बार कृष्ण भगवान जावट में आकर डोल रहे थे यहाँ वहाँ, सब सखा भी आ गए थे गौचारण करते करते, तो उस समय जजला बहुत सतर्क हो जाती है, कहती है अभी वो इधर ही आया हुआ है, सब ध्यान रखना, घर पर पैरा रखना और उसको अंदर आने मत देना, वहाँ पता नहीं कैसे अंदर घुस जाएगा। तो सब लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। और अभिमन्यु कहता ठीक है मैं भी जरा मार्केट में जाता हूँ सब्जी वब्जी खरीदने के बहाने, और देख के आता हूँ वो कहाँ पर कैसे आ रहा है। तो वो निकल जाता है मार्केट में। जैसे ही वो मार्केट जाता है तुरंत कृष्ण अभिमन्यु का रूप धारण करके घर पर आते हैं और कहते हैं मैया, वो कृष्ण जो है वो बहुत उधम मचा रहा है, वो भी यहाँ पर आएगा ना तो उसको पीटने के लिए तैयार रहना आप, वो जल्दी आने वाला है इधर, मैंने सुना है दूर से जाकर। और चले जाते हैं और फिर श्री कृष्ण जो है ना वो भी अभिमन्यु बने हुए हैं एकदम रॉयली घर पे चले जाते हैं अंदर, और राधा रानी के साथ में संवाद करना शुरू करते हैं, उनका मिलन होता है अच्छी तरह से, एकांत लीला होती है। पति घर पे आए तो क्या कह सकते हैं, तो दरवाजा बंद करके बैठते हैं अंदर, अच्छी बातें चीतें करते हैं। कुछ देर बाद में जो खराब अभिमन्यु है वो आ जाता है और उसको झाड़ू लेकर कुटिला जटिला बहुत पीटती है, तो मैया मैया नहीं मैं तुम्हारा अभिमन्यु हूँ, वो मुझे सब पता है, इनको सब पता है, और पीटती है उसको वहां से भगा देती है। और उतने में राधा रानी और कृष्ण बने हुए अभिमन्यु जो बाहर आते हैं, मैया क्या हो रहा है बाहर, इतना शोर क्यों मच रहे हैं? ये हमारे प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से ये लीला बताकर उसका चित्रपट बनवाया था, और वो कृष्ण के बहुत सारे आपको ग्रंथ में मिलेगा कि अभिमन्यु को जटिला कुटिला पीट रही है और पीछे से कृष्ण भगवान देख रहे, वाह बड़े बढ़िया चल रहा है। लेकिन हर बार ये सफल नहीं होते हैं। हर बार सफलता नहीं होती है। तो एक बार कहा है कि वो रात को आते हैं, दिन में आते हैं और दिन भर कोशिश करते रहते हैं, दिन भर उनको ना प्रवेश नहीं मिलता है। तो रात को एक बेर के पेड़ पर रात भर बैठकर राधे को पुकारते रहते हैं, रोते रहते हैं, और रात भर के सुबह होने तक भी दर्शन नहीं होता है। फिर बहुत नाराज होकर दुखी होकर घर चले जाते हैं। तैसे ही बहुत सुंदर सुंदर लीला है, उससे राधा और कृष्ण के बीच का जो दिव्य प्रेम है उसकी गरिमा बढ़ती है, उसकी गहराई बढ़ती है और दिव्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। और सभी जितने भी सखा हैं, सखियां हैं, ये इस मिलन को और मधुर और गहरा बनाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। सभी जितने विस्तार बने हुए हैं कृष्ण के अंग के और राधा रानी के अंग के गोपियां, वो सभी कृष्ण और राधा रानी के मिलन के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली दे आर वर्किंग ऑन हाउ टू मेक देम मीट, कैसे जुगल जड़ी को हमेशा मिलन कराया जाए, इसी भाव में रहते हैं। और यही पूरे ब्रज का भाव है, सब लोग यही सोचते रहते हैं। तो ऐसे एक बार कहते हैं कि लुकलुक कुंड, पता है आपको लुकलुक कुंड कहां पर है? कितने लोगों ने दर्शन किया है लुकलुक कुंड का? लुकलुक कुंड जो है वो काम्यवन में है और काम्यवन के पहाड़ी भी शंकर जी स्वयं हैं, तो वो पहाड़ी के नीचे खाई में सुंदर लुकलुक कुंड है, वहां पर बहुत सुंदर लीलाएं हैं आंख मिचोली की, लुका छुपी की लीलाएं हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड करना, फिर घुमाना, फिर यहाँ वहां से पीठ से पीटते रहना सबको, ऐसे ग्वाल बाल के साथ भी कृष्ण लुका छुपी खेलते हैं वहां पर, और राधा और गोपियों के साथ भी लुका छुपी खेलते हैं, ऐसा सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर हैं। तो एक दिन कृष्ण लुका छुपी खेलने के बाद जो छुपे ना, वो छुपे ही रहे किसी गुफा में, प्रकट ही नहीं हुए। तो अभी देखो आप खेल रहे हो, जैसे कि वो व्योमासुर की लीला में क्या हुआ था, वो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भेड़िया बनेंगे, कुछ लोग सिपाही बनेंगे, कुछ लोग चोर बनेंगे, और चोर लोग भेड़ियों को चोरेंगे। इसका मतलब वो ग्वाल बाल भी भेड़िया बने हुए हैं, उनको चोरी करके ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सब संख्या कम होती जा रही है। अभी लुका छुपी में क्या होता है, बाद में सेल समाप्त होता है, सब वापस लौट के आते हैं, लेकिन अचानक सारे गोपों की संख्या कम 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 होने लगी, तो चिंता होने लगेगी ना। तो कृष्ण बलराम ने विचार किया, अरे क्या हो गया, सब अपने ग्वाल बाल कम होते जा रहे हैं। वो देखो वो जो है ना ग्वाल बाल चोर बनकर आया है ना, वो सारे ग्वाल बालों को चोर कर गायब कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब दिन भर खेल खेला लुका छुपी का, तो एक बार लुका छुपी खेलने के बाद किसी को स्पर्श किया तो वो पकड़ लेते हैं उसको, दोबारा आते हैं, फिर दोबारा गोल गोल घूमते हैं, फिर किसी को पकड़ के ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण एकदम जो गए छुपने के लिए वो गायब हो गए। अभी घर जाने का समय हुआ तब भी नहीं प्रकट हुए, तो सब व्याकुल होने लगे, रोने लगे, और गोपियां यहां से व्याकुल है क्योंकि उनको मिलने का समय हो रहा है और यहां से कृष्ण गायब है, और यहां से उनको घर जाने का समय हो रहा है और यहां से कृष्ण गायब है। अरे क्या मैया को मुख दिखाएंगे, उसको लेके गए थे कहां छोड़ के आए। तो संध्या का समय ना दोनों तरफ से व्याकुलता का समय है, गोपियों को मिलना है और यहां से व्याकुलता का है, अगर मिल गए घर जा रहे हैं तो अभी छोड़ना पड़ेगा इनको, इनसे इनका संग छूटेगा अभी। और गोपियां व्याकुल है कि कब मिलेंगे, दिन भर इंतजार कर रहे हैं, दिन भर ये आनंद ले रहे हैं, दिन भर वहां तड़प रही है। इस प्रकार का संध्या का समय बहुत कातर समय होता है। तो श्री कृष्ण अचानक उस चोटी पर प्रकट हो जाते हैं पहाड़ के और मुरली बजाने लगते हैं। जो मुरली बजाते हैं तो वो एक अलग चैप्टर है पूरा, क्या क्या हुआ। लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो पत्थर पिघल गया तो गाय दौड़ के आई तो गाय के खुर का भी निशान बना और लकुटी का निशान भी बना, मुरली का निशान भी बना। और जब मुरली बंद की तो बंद क्यों की, सब लोग आए मिलने के लिए उनको, यहाँ से ग्वाल बाल आए, वहाँ से गोपियाँ आई, और फिर उन्होंने वहाँ पर रास रचाया है चरण पहाड़ी पर, और वहाँ से वो नंदगांव बरसाना संकेत गए हैं, वहां पर भी उन्होंने रास रचाया है। उसके बाद में जब कोकिला जब उन्होंने संकेत में रास रचाया तो वही बात, फिर गोपियों को फिर वो गर्व हुआ कि वो सब हमारे साथ में है, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए लेकिन राधा रानी को लेकर गए और गोपियां व्याकुल हो रही हैं। तो फिर वो अकेले लेकर उनको वापस संकेत में गए, एकांत में दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके दोनों घूमते 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 कोकिला वन आ गए। और कोकिला वन में जब आए वो दोनों राधा और कृष्ण, अभी कहाँ से गायब हो गए, संकेत से गायब हो गए ना, तो वहाँ से गोपियाँ ढूंढ रही है, यहाँ से अकेले एकांत विहार कर रहे हैं। तो कोकिला वन पहुँचते हैं, तो कोकिला वन जब पहुँचते हैं तो दूर से गोपियों का रुदन सुनाई पड़ता है उनको, क्योंकि गोपियाँ भी ढूंढ रही है उनको, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, चर्चा भी कर रही है कि कहाँ गए। तो फिर वो देखते हैं चरणों के चिन्हों को, देखते हैं राधा और कृष्ण के, तो ढूंढते वहां से आ रहे हैं और ये यहां पर बैठकर उनकी जो आहट है वो सुन रहे हैं। तो राधा रानी कहती है कि अरे गोपियां सब आ गई, चलो भागो यहां से। तो कृष्ण कहते हैं भागो चलो, तो कहते तुमने मुझे आज इतना चलाया है, इतना चलाया है, इतना चलाया है, मैं तो राजकुमारी हूँ ब्रह्मानु महाराज की, और तुमने मुझे पैदल चलाया, इतने वनों में घुमाया, मैं तो थक गई हूँ, अभी मैं चल नहीं सकती, तो चलो फिर कंधे में बैठ जाओ। तो कंधे में बैठने के लिए वो झुक जाते हैं, और राधा रानी समझती हैं कि कितना मेरे लिए उन्होंने आज आदर सत्कार किया है, तो मैं तो कुछ विशेष व्यक्ति हूँ। तो उस भाव से वो कह रहे हैं कि मुझे अभी अब कंधा दो, मुझे उठा कर ले जाओ। तो जब वो झुकती हैं बैठने के लिए कंधे पर, तो कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर वो जोर से आक्रोश करने लगती है, क्योंकि अरे मैंने थोड़ा सा गर्व कर लिया कि मैं स्पेशल हूँ, और देखो कृष्ण को खो बैठी मैं, और जोर से आक्रोश कर रही है। तो गोपियाँ वहाँ पर सुनती है, जो ढूंढ रही हैं कृष्ण को, तो राधा रानी की पुकार को सुनते हैं, तो वहाँ भाग के आते हैं, और देखते हैं राधा रानी बड़ी दुखी है। तो राधा रानी पूरा वर्णन करती है कि जब तुमको छोड़कर मुझे लेकर गए, मेरा कितना सम्मान किया, मेरा श्रृंगार किया, इतना मुझे आदर दिया, इतना मुझे सराहा, जैसे मैं एकदम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मुझे पूरा मेरा सम्मान किया उन्होंने, अभी मैं मूर्ख की तरह अहंकार करके उनको खो बैठी हूँ, ऐसा करके बहुत जोर से रुदन करती हैं। तो कहते हैं पुष्पों के मकरंद से गोपियों ने उनका अभिषेक किया है, उनके विरह को शांत करने के लिए। बहुत देर तक उच्च उच्च कोटि के जड़ी बूटियों से उनका रस से उनका अभिषेक किया है, और फिर वो सब मिलकर कृष्ण को पुकारते हैं, पश्चाताप से पुकारते हैं, हमने गर्व किया, और व्याकुल होकर भी पुकारते हैं, तो कृष्ण कोकिला उन्हें प्रकट हो जाते हैं, और फिर उनका मिलन होता है। फिर कोकिलावन में सब लोग रास करते हैं, इसलिए कोकिलावन महारास की स्थली भी है। तो वहां पर फिर अंतिम लीला, ये लीला में अंतिम अंतिम क्षण में वहां रास करते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं बीच में, तो गोपियां पूछती हैं कहाँ गए थे आप, क्योंकि राधा रानी को भी छोड़कर गए, कहाँ गए थे? तो कहते हैं मैं श्वेत द्वीप में हंस मुनि को मिलने गया था। उसकी छोटी सी कहानी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो हंस मुनि उनको पुकार रहे थे श्वेत द्वीप में, तो बीच के समय पर वो कहते हैं मैं हंस मुनि को जाकर मिल के आया, इसलिए मैं नहीं था। फिर वो रास्ते लड़ जाते हैं। इस प्रकार से ब्रजभूमि जो है वो सुंदर सुंदर लीलाओं से भरी हुई है। सार उसका एक ही है, हमारे लिए मनोरंजन की बात नहीं है इसके अंदर, केवल यही बात है कि कैसे ग्वाल बाल और गोपियाँ और सब ब्रजवासी प्राणी पक्षी पशु जितने भी है, वो सब कैसे श्री कृष्ण और राधा रानी के आनंद के लिए व्याकुल है। देयर इज ओनली फोकस, मुझे क्या मिलेगा उसमें, उसमें किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि ब्रज में सब लोग राधा कृष्ण को कुछ ना कुछ प्रदान करने के लिए जीते हैं, उनसे कुछ पाने के लिए जीते नहीं हैं, आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन कुछ और मिलेगा इस भाव से नहीं रहते हैं। जैसे कृष्ण के जन्म के समय कहा गया था कि हम लोग कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम उसको देने आए हैं आशीर्वाद, नज़र उतारने आए हैं, हम शुभ चिंतन करने के लिए आए हैं। तो ब्रज उपासना का मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण को हम कुछ देना चाहते हैं, और हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, सब कुछ उनका ही है, तो फिर हमारा क्या है जो हम उनको दे सकते हैं? हमारा भाव, हमारा हृदय, हमारी इच्छा, वही केवल हमारा है। स्वेच्छा से जो हम सोचते हैं कि ये मेरा है, और अब सोचते हैं कि ये मेरा नहीं है, कृष्ण का है, ये जो विचार परिवर्तन है वही हमारा दान है कृष्ण के लिए, वही हम निछावर करना चाहते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि सत्य तो यही है कि सब उनका ही है, हम केवल वो उस भाव को अपनाते हैं कि ये मेरा है, जो मेरा नहीं है, जो उनका है, अभी मैं समझ रहा हूँ कि मेरा है, और उस भाव को त्यागना कि ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है, उसी को 18वें अध्याय में गीता में संन्यास का बीज कहा है। वैराग्य का बीज क्या है? कि अभी तक जो मैं अपने नियंत्रण में है ऐसा समझ रहा था, वो अब मैं समझ चुका हूँ कि वो मेरा नहीं है, वो कृष्ण का है, उन्हीं को अर्पण करना चाहिए। तो वैराग्य जो है वो वस्त्र बदलने से और हेयर स्टाइल बदलने से नहीं होता है, वैराग्य हृदय के भाव से होता है। नियंत्रक प्रवृत्ति जो है उसको छोड़कर श्री कृष्ण के लिए समर्पित करना, ये वैराग्य प्रवृत्ति है। और वो प्रकार की वैराग्य प्रवृत्ति जो है वो भक्ति भी है, क्योंकि उसमें वो अनुभूति है कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान के आनंद के लिए देना है। मैं जो जो कुछ पकड़ के बैठा हूँ वो भी छोड़ना है मुझे और उनकी सेवा में देना है। ये इसलिए सारे ब्रजवासी जितने ग्वाल बाल जितने पंछी मोर जितने भी थे ना, सब परम वैरागी थे, वो परम साक्षात्कारी जीव थे, और सब लोगों का एक ही चिंतन था कि कैसे राधा कृष्ण को आनंद दिया जाए, कैसे उन जुगल जोड़ी को प्रसन्न किया जाए, और उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार थे वो, जो उनका था नहीं था जो भी था वो सब कुछ वो कृष्ण के लिए देने के लिए तैयार थे। तो इन लीलाओं को सुनते समय भी हमको यही विचार करना चाहिए कि इसमें जो सम्मिलित है, ये लीला के जो पात्र है उनका भाव क्या है, उस भाव को हमको पकड़ना है, तब जाकर इस ब्रज लीला सुनने का जो लाभ है वो आपको मिल सकता है, हमको मिल सकता है। केवल मनोरंजन के लिए सुनते रहेंगे तो वो जो भाव नहीं पकड़ेंगे तो लीला का जो प्रयोजन है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं। नियंत्रक भाव को छोड़ना है बहुत मुश्किल है, लेकिन नियंत्रक भाव को छोड़ना है तो फिर वो साबुन लगाना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम, बहुत कर्रा दाग है वो, उसको कई प्रकार के अलग अलग केमिकल लगाने पड़ते हैं तब वो दाग निकलता है। तो सरकार से हमारे पास एक ही साबुन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से हम पुकारते हैं इसको, और हृदय से पुकारते हुए उन पर ही ध्यान करते हैं, तब जाकर मैंने जैसे कहा था ना वो इमली तला में परिवर्तन कब हुआ, जब मुख से एकाग्रता से नाम स्मरण हो रहा है, अंतर्मुख होकर आंखें बंद होकर अंदर के हृदय के पटल में राधा रानी के चरणों पर पद ज्योति पर ध्यान कर रहे हैं, तब जाकर वो परिवर्तन होता है। वैसे हमारे अंदर भी जब तक हम ये हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं, एकाग्र होकर नहीं करते, एक रूप नाम रूप नाम से एक रूप होकर नहीं करते हैं, तब तक ये परिवर्तन सब दूर रहता है, बहुत दूर की बात है। लेकिन परिवर्तन सहज हो जाता है जब हम उस प्रक्रिया के लिए समर्पित हो जाते हैं। भले सुबह के समय के लिए क्यों क्यों ना हो, दिन भर करना है चिरंतन करना, लेकिन सुबह के समय भी अगर वो उस नियम से मन लगाकर करेंगे तो दिन भर में परिवर्तन का अनुभव करेंगे, फिर सुबह करेंगे फिर दिन भर अनुभव करेंगे। सुबह जैसे किया है वो परिवर्तन कितना हुआ है उसका दिन में हमको प्रकट्य होगा, दिन में दर्शन होगा कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या है उसका, लोग बताएंगे आपको, उसका सारा राज जो है वो सुबह छुपा हुआ है। सुबह जब करते समय हम लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि जग के किसी अन्य विचारों पर विचार मंथन कर रहे हैं कि किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि चार चार विषयों पर चिंतन हो रहा है, ये सारा उसके मूल है और उसके आधार पर दिन का व्यवहार है आपका, आपका व्यक्तित्व आपका व्यवहार दिन में दिखाई पड़ता है। सुबह आपका जब अगर एकाग्रता से एक ही चिंतन में होता है भगवान के नाम पे तो उसका परिणाम दिन में व्यवहार में दिखाई पड़ता है, और वो व्यवहार ही लोग देखते हैं। सुबह तो आपको मिलने आते नहीं हो सुबह आप अपने अकेले रहते हो भक्तों के बीच में, और दुनिया आपको दिन में देखती है, तो दुनिया दिन में आपका व्यवहार जैसे परसीव करती है वैसे आपका, कहते ना कौन कितना पानी में है वो दुनिया पहचान लेती है। तो इसलिए हमको सुबह के समय पर बहुत केंद्रित करना है ध्यान अपने आप को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।